नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र और जनसंख्या विश्व के लिए आशा की किरण है। उन्होंने कहा कि कल संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति का संबोधन 140 करोड़ लोगों के भरोसे की अभिव्यक्ति थी। आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए अगले 25 वर्ष महत्वपूर्ण हैं।
2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण 25 वर्ष का दौर आरंभ हो रहा है और इस शताब्दी की दूसरे क्वार्टर का ये पहला बजट आ रहा है। आत्मविश्वास भरा हिंदुस्तान आज विश्व के लिए आशा की किरण भी बना है, आकर्षण का केंद्र भी बना है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता विकास, निवेश और रणनीतिक सहयोग के नए मार्ग प्रशस्त करेगा।
इस क्वार्टर के प्रारंभ में ही भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाली दिशाएं कितनी उज्जवल है उसकी एक झलक है। ये फ्री ट्रेड फॉर एम्बिशियस भारत है, ये फ्री ट्रेड फॉर एस्पिरेशनल यूथ है, ये फ्री ट्रेड फॉर आत्मनिर्भर भारत।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश करेंगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार के निर्देशन में वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने इस सर्वेक्षण को तैयार किया है। आर्थिक सर्वेक्षण देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति और भविष्य के दृष्टिकोण की एक व्यापक समीक्षा है। केंद्रीय बजट 2026-27 रविवार को पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण अगले महीने की 13 फरवरी तक चलेगा। बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र के दौरान 30 बैठकें होंगी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कल नई दिल्ली में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण दिवस के अवसर पर आधार ऐप का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आधार अब 143 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को कवर कर रहा है। नए आधार ऐप से उपयोगकर्ता अपनी जानकारी को ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। कई सेवाएं जिनके लिए पहले आधार केंद्र जाना पड़ता था अब डिजिटल रूप से पूरी की जा सकती हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण सुनवाई प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए राज्य को प्रतिदिन 7 से 8 लाख मतदाताओं की सुनवाई करने का निर्देश दिया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय से जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ साथ सुनवाई में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार ये चरण 7 फरवरी तक जारी रहने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख अजित पवार का अंतिम संस्कार आज बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है। श्री पवार का कल विमान हादसे में निधन हो गया था। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 3 दिन के शोक की घोषणा की है। गणतंत्र दिवस का समापन समारोह बीटिंग रिट्रीट आज नई दिल्ली में विजय चौक पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। भारत 31 जनवरी को दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। सहअध्यक्षता भारत और संयुक्त अरब अमीरात करेंगे। अरब लीग के अन्य सदस्य देशों के विदेश मंत्री और महासचिव इसमें भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विदेश मंत्रियों की ये बैठक 10 साल के अंतराल के बाद हो रही है। भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक इस साझेदारी को आगे बढ़ाने वाला सर्वोच्च संस्थागत तंत्र है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है और अगले महीने राष्ट्रीय चुनाव से पहले सुधारात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को लिखे खुले पत्र में एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव एग्नेस कालामार्ड ने कहा है कि अंतरिम प्रशासन जनविश्वास हासिल करने में असफल रहा है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 81,808 और निफ्टी 25,193 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।